ज्ञानस्मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि तवैवास्मि न जिहामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम शरणति सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी नतमस्तक होता हूं। प्रिय सज्जनों, वैष्णव, माताएं और बहनों, मैं पहली बार इस फिजी देश में आया। यहां आते ही एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही कांतिलाल जी के प्रेरणा से हो या किसकी प्रेरणा से मैं नहीं जानता, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मेरे साथ में बहुत ही मधुर व्यवहार किया और मुझे लगा कि मैं एक मिनी भारत में प्रवेश कर रहा हूं। मैंने देखा रास्ते के दोनों किनारे पल्लों से भरे हुए आम के वृक्ष खड़े हैं, दोनों पास में केले के खंभे जैसे कदम पेड़, उसके केले के पेड़ इत्यादि देखा। भारत की याद आई, मैं भारत छोड़ करके नहीं बल्कि भारत में ही हूं। विशेष करके जब यहाँ आया तो देखा ये और विदेश में मुझे हिंदी में नहीं बोल करके अंग्रेजी में बोलना पड़ता था, किंतु यहाँ देखा ये स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा हिंदी में ही बोलने का सुयोग है। इस तरह से यहाँ पर जमुना जैसे समुद्र को देखा, नीली नीली श्याम रंग की, और उसमें गिरिराज जैसे छोटे छोटे पहाड़ियों को देख करके गिरिराज और वृंदावन का स्मरण हो आया मुझे। यहाँ के लोगों में भी, महिलाओं में भी कृष्ण भक्ति देखी तो हमारा हृदय आनंद से लहरा उठा। यहाँ पर हमारे पूज्य शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी आए थे, आपको पहले ये बतला चुके हैं। मैं उसी की कड़ी में हूं। मैं जो कुछ उन्होंने कहा था उसको फिर से रिपीट करने के लिए, उसको दोहराने के लिए आप लोगों को स्मरण कराने के लिए आया हूं। मैं यद्यपि विद्वान तो नहीं किंतु लोग मुझे ये कहते हैं, मैं सनातन वैदिक धर्म और ज्ञान का प्रचारक हूं। मैं दरिद्र भारत से नहीं बल्कि एक समृद्ध भारत से आया हूं। हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, अर्थमंत्री, विदेशों में भिक्षा की झोली लिए हुए डूबते हैं। हम उस तरह से इस विश्व में नहीं आया, हम तो उस समृद्ध भारत से आए हैं जहाँ की एक कण आप लोग यदि ग्रहण करें या विश्व का कोई भी ग्रहण करे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, फिर उन्हें किसी चीज की वैभव की जरूरत नहीं रहेगी। उस समृद्ध भारत से हम ऋषि मुनियों के भारत से, समृद्ध भारत से आया। मैं ये बतलाने आया जो कि कहीं भी विश्व के कहीं भी वैसी शिक्षाएं नहीं मिलेंगी। वेद हमारे वैदिक ज्ञान और संस्कृति का मूल ग्रंथ है जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, स्वयं भगवान की वो वाणी है, भगवान का वो श्वास है जो वेद के नाम से प्रख्यात है। मैं इसलिए बतला रहा हूं आप लोग सहज रूप में बड़े बड़े दार्शनिक भावों से युक्त वैदिक ज्ञान को आप लोग थोड़ा सा समझ सके। ओंकार अक्षर ब्रह्म है, ओंकार जो है ये अक्षर ब्रह्म है। इसमें तीन अक्षर है, अ उ म। अकारण उच्यते कृष्ण, अकार से कृष्ण का बोध होता है। मकार ये राधा जी के लिए है, जैसे आग और दाहिका शक्ति अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, दोनों मिले हुए हैं। और मां उसमें जो है अ उ म, ये जीव वाचक हम सब जीव है, ये तीनों मिलाकर के अक्षर ब्रह्म है ये ओंकार। उससे गायत्री का प्रकाश हुआ है, उस गायत्री के द्वारा तीन वेद साम अथर यजुर् इत्यादि, ये तीन अथर्ववेद संपूर्ण वेद का नाम, और उसमें वेदत्रयी साम यजुर् और ऋक, ये तीन वेद चारों तीनों मिलकर के और जो अंश रह गया मिलाकर के अथर्ववेद। इस अथर्ववेद इत्यादि के मंत्र और उपनिषद दो भाग है। उपनिषद वेदों का ज्ञान का अथाह भंडार है, यह मनुष्य के द्वारा नहीं स्वयं भगवान के द्वारा है। इसका व्यास देव जी ने, जो भगवान के अवतार हैं, ज्ञान के भक्ति के अवतार हैं, उसका संकलन करके ब्रह्मसूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें 550 सूत्र है। इसका अर्थ रामायण पुराणों का सबका अर्थ, गायत्री और वेद सबका तात्पर्य श्रीमद् भागवत को उन्होंने प्रकाश किया पीछे से। ये वैदिक ज्ञान का एक मंत्र करके सार संकलन है श्रीमद् भागवत। इसे ऊपर और कोई साहित्य नहीं है विश्व ब्रह्मांड में। इसमें सनातन धर्म की जो व्याख्या दी गई, मैं सरल सहज रूप में और बोधगम्य भाषा के रूप में आपको बतला रहा हूं। सनातन धर्म कहते हैं सभी, सनातन धर्म है, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी बतलाया, सनातन धर्म एक माला है, उसमें बहुत से फूल लगे हुए हैं। किंतु इस चीज को गहराई से समझिए। क्या चीज सारे समझिए, ये सनातन चीज है क्या, है क्या सनातन। इस चीज को समझने के लिए आप लोग ये समझिए, इस जगत में जड़ और चेतन नाम के दो पदार्थ हैं, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से जिसको हम अनुभव करते हैं, इंद्रियों की पकड़ में जो चीजें आती हैं, जिसमें कि प्राण नहीं है, चेतनता नहीं है, ज्ञान नहीं है, सेल्फ नोइंग नहीं है, सुख दुख की अनुभूति नहीं है, उसको कहते हैं जड़। जैसे ये जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, जो कुछ ही देखते हैं विश्व में सभी कुछ ये जड़ है। जिन चीज जिन वस्तुओं में मैं हूं, सुख दुख की अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है, और जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसको कहते हैं चेतन। आत्मा निकल जाएगी शरीर में, मैं हूं, सुख दुख की अनुभूति कुछ भी नहीं रहेगी, सड़गल जाएगा, इसलिए ये जड़ है। किंतु जिन जिन चीजों में सुख दुख की अनुभूति अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो एक परम तत्व है, अखंड है। वो कौन है, वेदों की व्याख्या स्वरूप श्रीमद् भागवत कहते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकुशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। सनातन कौन है, पूर्ण ब्रह्म है। कौन है, वही यशोदा का लाला, कृष्ण कन्हैया, गोपीकांत और अंत में राधा बल्लभ, छोटा सा एक सुकुमार, हाथों में मुरली हुए, अधर पर मुरली धारण किए हुए, तीन तरह से टेढ़ा, त्रिभंग ललित, मंद मुस्कान उसके होठों पर खेल रही और विश्व के जड़ चेतन समस्त लोगों के चित्त को आकर्षण करने वाला यह नंद का लाला, जो ब्रज का मित्र है, किसी का सखा है, किसी का प्रिय बंधु है और किसी का प्राण बल्लभ है। किसका प्राण बल्लभ है? गोपियों का प्राण बल्लभ है। ये कौन है? यही अनादि आदि समस्त कारणों के भी कारण, यहां तक कि राम, बलराम, निसिंह, कल्कि, बामन इत्यादि जितने भी अवतार हैं सबका कारण, अखर ब्रह्म जो अवतार था उसका भी मूल कारण ये छोटा सा सांवला बंशीधारी मुकुट, किसका? मयूर मुकुट धारण करना और मंद मुस्कान वाला, वही ब्रज का नंद नंदन। ये श्याम सुंदर देखने में ऐसे ही छोटे हैं किंतु साधारण नहीं, ब्रह्मासन कर इत्यादि उसकी स्तुति करते करते थक जाते हैं, उनके हृदय में वो उसके चरण कमलों की धूली भी नहीं आ पाती। ये है कौन? यही सनातन ब्रह्म है। और सनातन कौन है? ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये कौन सनातन? ये जो जीव है, हम जो जीव हैं, ये सनातन है। हमारा शरीर ये जड़ है, ये अभी है और कल नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं शरीर का। इस शरीर में आत्मा है, इसलिए ये आत्माएं जितनी हैं ये सनातन है। ममई वंशो कौन है? भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने भी ऐसा बताया, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। मैं उन उदाहरणों को आप लोगों को सामने में, कठिन दार्शनिक विषय है इसलिए उसकी अवतारणा में नहीं कर रहा हूं, इसलिए सरल सहज गोबद बोधगम्य शब्द में बतलाऊंगा। और भी गीता में भी और भी बतलाया गया, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो नहन्यमाने हन शरीरे, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयं सनातन। फिर ये जीव के संबंध में बतलाया, ये जो जीव इस शरीर में जितने भी हैं, शरीर नश्वर है किंतु इनकी आत्माएं हैं वो अभिनश्वर, परिवर्तन रही, शाश्वत, शाश्वत माने सदा रहने वाला, सनातन है। सनातन माने सदातन, भूत में, भविष्यत में, वर्तमान में एक रस रहने वाला, उसमें कोई रूपांतर नहीं होता, ऐसा वो तत्व है। ये भगवान का अंश है, जीवर स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। कोई मानो और ना मानो इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, हम जितने हैं स्वरूपगत भगवान कृष्ण के दास और दासियां हैं। कोई भी हो, यहां तक पेड़ पौधे, कीट पतंग, बौद्ध, हिंद, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जितने भी है जीवात्मा से, हमारे शास्त्र में अधिक तरह से हिंदू नहीं कहा गया, जीवात्मा के नाम से यह संबोधित किया गया, क्योंकि ये विश्व भर का ये एकमात्र धर्म है, यह सनातन धर्म है। दो सनातन धर्म नहीं है, एक ही है। हम बतलाएंगे धीरे धीरे जो सनातन धर्म कहते हैं किसे, तो अब ये समझिए, ये आत्मा है ये भी सनातन है, भगवान का अंश है और ये सनातन है। भूतकाल में भी हम थे, अभी भी हैं, पीछे भी रहेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बतलाया, तुम मत समझो जो अभी मैं हूं, तुम भूल गया मैंने आज से करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को यह ज्ञान दिया था, इसलिए ये जो ज्ञान है ये सनातन है। इसलिए अब सनातन वस्तु दो हुए, एक तो परब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं और उनके जितने भी अवतार विष्णु तत्व हैं, ये सभी एक तत्व हैं। जैसे एक चंद्र की बहुत सी 16 कलाएं होती हैं, उनके अवतार भी वो स्वयं कृष्ण ही है, विष्णु ही है, इसलिए सबके सेवक को वैष्णव लोग कहते हैं, सब हम वैष्णव एक हैं। दूसरी बात, जीवात्माएं भी सनातन है, तो जब दो सनातन हैं और ये भगवान का अंश है, तो दोनों में रिलेशन जो है उसको कहते हैं सनातन धर्म।
एक परब्रह्म कृष्ण हुए सनातन, परम सनातन जीवों के आदि अनादि परमात्मा, हम लोग हैं आत्मा। आत्मा परमात्मा एक नहीं है। अच्छा, वो जो परमात्मा है कृष्ण है, बड़े मधुर हैं उनका रूप, उनकी लीलाएं बड़ी मधुर हैं, उनकी बंसी मधुर है, उनका चलना मधुर है, उनका बोलना मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनका सब कुछ मधुर है। वो शक्ति के बिना निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, निरंजन नहीं है। इस चीज को समझिए, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान का द्विज श्याम सुंदर, मुरलीधर श्याम सुंदर, ये उनका अपना रूप है। यदि उनका रूप नहीं होता तो ये जगत का रूप कहां से आता? जीरो से नहीं। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया, पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम् उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो परिपूर्ण है, पूर्णतम है वो वस्तु, हम उसके अंश हैं, हम पूर्ण नहीं है। इसलिए माया के बंधन में आ जाते हैं। अभी भगवान की सेवा छोड़ करके हम संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए, नाना प्रकार के रोगों से प्रपीड़ित हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के तापों से जल रहे हैं। कभी हम सूकर, कभी हम कुकर, कुत्ते भी बने थे, कभी देवता भी बने, कभी गंधर्व बने। आज बड़े सौभाग्य से भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया। क्यों दिया? देख ईश बिनु हेतु स्नेही, बिना कारण के अहेतु की हैं। देखा जी, ये दुर्दशा प्राप्त हो रहे हैं, कभी गधे, कभी सुअर, कभी कुछ बन रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, दुख ही मिलता है। ऐसा कोई प्राणी विश्व में है जो दुख चाहता हो? कोई भी नहीं। पेड़ पौधे भी नहीं दुख चाहते। हम भी सुख चाहते हैं। हम भारत को छोड़ करके आए यहां पर किस लिए? रुपया मिलेगा, हम सुख से रहेंगे, किंतु मर क्यों जाते हैं? रुपया बचा नहीं देगा, धन नहीं बचाएगा, प्राण नहीं देगा, इसलिए इसे कौन रक्षा करेगा? मैं भगवान का दास हूं, इसका रियलाइजेशन होना चाहिए। हम इस जगत के नहीं हैं। हमारा माता का माता का माता का माता कौन है? कृष्ण। पिता के पिता के पिता पिता कौन है? मूल वही कृष्ण। इस संबंध को भूलने से हमारी ये दुर्दशा हो करके, ऐसा कोई मनुष्य है जो ये कहे, हाथ उठाए तो, जो मैं जन्मा हूं मरूंगा नहीं कभी, है कोई? मुझे कोई रोग नहीं होगा, मेरे केश नहीं पकेंगे, दांत नहीं टूटेंगे, आंखों की ज्योति नहीं चली जाएगी, ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। अभी एक सप्ताह पहले किसी की शादी हुई, अपनी स्त्री के साथ में घर आए और कहीं एयरपोर्ट में जा रहे थे और कहीं वहीं पर एक्सीडेंट हो गया, मर गए, खत्म हो गए। ये यही की बात, किसी का कोई ठीक नहीं है ने? ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि कृष्ण का भजन करके कृष्ण को हम स्वरूपता नहीं जान लेंगे और अपने स्वरूप को नहीं जान लेंगे। ये दोनों का स्वरूप में के जो संबंध है, इसी का नाम सनातन धर्म है। परमात्मा कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड इज कृष्ण, और हम उसके पार्ट एंड पार्सल है। दोनों में हमारा नित्य संबंध है, बड़ा ही मधुर संबंध है, किंतु हम उसे भूल जाने के वजह से, माया ने ये शरीर दे दिया, किसी को गधा शरीर दिया, किसी का बंदर का शरीर दे दिया, सभी सुख खोज रहे हैं, सब में स्त्री पुरुष का जोड़ा है, कौन नहीं खाता है? सुकर तो बिच्छा खा करके उसको वही परम आनंद में भोग करती है, सुअर वही कहीं नाले में लोट कुपट करके बड़ी सुंदर उसको वही लगता है, किंतु जीवात्मा जब तक भगवान को नहीं जान लेगा, कृष्ण को नहीं जान लेगा, उनका स्मरण नहीं करेगा, नाम नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए जो चीज हमें संबंध में इस जगत से उठाकर भगवान के चरणों में पहुंचा दे, उस भक्ति का नाम सनातन धर्म है। इसलिए सनातन सवई पुंसंग परो धर्मो जतो भक्ति रजोखजे अहेतु के अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे तैल धारावत अविच्छिन्न गति से जब हमारा चित्त भगवान की तरफ में अपने आप लग जाता है, जिस वृत्ति के द्वारा, उस वृत्ति का नाम भक्ति है। यही सनातन धर्म है, दो नहीं। सनातन धर्म में भगवान एक सनातन है, पहले कह चुका, और जीवात्मा सनातन है। इसलिए जीवात्मा का भगवान से जो संबंध है ये सनातन धर्म है, शरीर से जो दूसरों का संबंध है ये सनातन धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सनातन नहीं है, मुसलमान धर्म सनातन नहीं है, संसार में जितने भी धर्म हैं ये सनातन धर्म को पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख सीढ़ी हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में सनातन धर्म के समस्त अंगों को लिया गया है, इसलिए सनातन धर्म भी हिंदू धर्म है। किंतु हम हिंदू नहीं हैं, क्या हैं? भगवान का नित्य दास। ये चीज को समझना है, हम पहले भगवान के दास हैं, इसके बाद में हिंदू हैं या कुछ भी हैं, इस चीज को समझो। मर जाएंगे, ये शरीर हिंदू है कि मुसलमान है या क्रिश्चियन है? यदि कहो आत्मा, आत्मा की कौन सी जाति है? आत्मा हिंदू है या मुसलमान या क्रिश्चियन या ईसाई? वो सनातन है, वैष्णव है, वो भगवान का भक्त है, भगवान का दास है। यही जीव का स्वरूप धर्म है, इसी को सनातन धर्म। ये कभी नहीं बदलेगा। आप मनुष्य से गधे होंगे किंतु आप में प्रेम कुछ रहेगा। अभी वही प्रेम विकृत होकर के भगवान को भूलने से हम समझते हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई। हम यहां के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, हम इंग्लैंड के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले, आत्मा में ये सब चीज नहीं है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, ना हम वर्णी न चगृहपत्र नो बानस्थो वा जत्रिवा, किंतु प्रोद्दान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भक्तु पद कमलयो दास दास। ना हम पहले, ना हम विप्र न च नरपति, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं बानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास या ब्रह्मचारी नहीं, मैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई इसमें से कुछ भी नहीं, मैं क्या हूं? गोपीर भर्तु पदकमलियोर दास दा, गोपियों के भर्तु जो भर्ता जो कृष्ण है, प्राण बल्लभ जो कृष्ण है, उनके चरण कमलों के दासों के दासों का दासों का अनुदास का चरण कमल का धूलि, ये हमारा स्वरूप का परिचय है असल। अभी हम बाय चांस किसी देश में हमारा जन्म हुआ है, हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हिंदू कुल में जन्मे, क्योंकि उसमें सनातन धर्म की पूर्ण व्याख्या है और उसके सहारे से हम सहज ही सनातन धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। गीता जैसा ग्रंथ कोई भी विश्व में है, भागवत जैसा, वेदों जैसा कोई भी ग्रंथ है। आज विश्व को, विश्व इसे ग्रहण करके धन्यति धन्य हो करके आत्मधर्म की तरफ में आ रहा है। मैं इस चीज को समझाने के लिए थोड़ी सी एक लघु कथा के रूप में बतलाऊंगा। एक समय, ये वेदों में वर्णन किया गया है, उपनिषदों में, एक समय एक काला कल उठा व्यक्ति, आठ अंगों से टेढ़ा, आठों अंगों से टेढ़ा, पैर में बेवाय फटी है। बेवाय जानते हैं, पैर में मैल लगने से उसके दरार जैसा फट जाता है, चल नहीं सकता था, बड़ी मुश्किल से लक्ष्यों के सहारे ऐसे करता हुआ वो चलता था, बड़ी मुश्किल से हिमालय के तराइयों में से निकलकर जनकपुर में पहुंचा। उस समय जनकपुर ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मर्षि जनकपुर की, जनक की राजधानी थी, बड़े ब्रह्मज्ञानी और ऋषि के समान थे। सुखदेव गोस्वामी भी उनके यहां आए थे, बड़े बड़े यज्ञवल्क्य इत्यादि ऋषि महर्षि लोग जो बड़े तत्वदर्शी और ब्रह्मदर्शी हैं, वो लोग भी उनके दरबार में रहते थे, वहां पर थे। एक समय तो ये अष्टावक्र जी उनके दरबार में पहुंचे, इनको देख करके प्रहरियों ने इनको जाने दिया सीधे राजसभा में। राजसभा में सभी बड़े सज्जन लोग अच्छे अच्छे पगड़ी बांधे हुए, वेशभूषा ठीक रखे हुए राजसभा में बैठे थे। उनको देख करके सभा के सब जितने बड़े ब्राह्मण और पंडित जोगी तपस्वी ब्रह्मर्षि थे सभी लोग हंस दिया। राजा जनक भी जोर से तो नहीं हंसे किंतु मुस्कुराने लगे। देखो तो ये कितना ढीठ है। ढीठ शब्द समझते हैं? ढीठ माने निर्भीक, जिसको डर नहीं है। ये कैसे यहां पर चला है? इसको सभा में आने का अधिकार नहीं, कपड़े लगते अच्छे नहीं है, मैला की चला व्यक्ति आठ अंगों से चढ़ा। राजा जनक ने उठ करके हाथ जोड़ करके कहा, जे महाशय जी आप इनको देख करके जब हंसने लगे तो वो भी हंसने लगा, लठियों पर अपने मुख को खड़ा करके रख करके, और वो भी खूब जोर से हो करके हंस उठा। राजा जनक कहा, ये तो देखो तो इसको देख करके सभी हंस रहे हैं और ये न जाने किस लिए हंस रहा। पूछा, जी आप किस लिए हंस रहे, आप लोग किस लिए हंस रहे? हमने देखा आप आठ अंगों से टेढ़े, पैर में फटे हुए हैं और मैला कुचैला शरीर, और आपको डर नहीं लगा, भय नहीं लगा इस सभा में घुस आए। उन्होंने कहा, जी ठीक है, मुझे देख करके आप लोगों ने हंसा। राजा जी ने कहा, जी आप किस लिए हंसे? उन्होंने कहा, मैंने हंसा नहीं, मैंने तो रोया, हमारा रोना ही ये हंसना था। मैं बहुत कष्ट से, आप लोग देख रहे हैं, मैं हिमालय की दूरी से बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर चल करके आया, इसलिए आया कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी तत्वदर्शी बड़े बड़े भक्त लोग हैं, किंतु मैं यहां करके जो दुखा देखा उसी के लिए मैं हंसा। क्यों आया मैं, पछता रहा। क्यों महाशय जी, आप देखने तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषि है, नहीं तो मैं तो देख रहा कि सब एक तरफ से चमार मूंछी, जूते को सिलाई करने वाले, जो चमड़े की सिलाई करने वाले वे सब चमार बैठे। आपको डर नहीं लग रहा था बोलते हुए? महाराज जनक जैसे लोग, जगवल्क जैसे लोग, बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग हैं और इनको आप चमार मूंछी कह रहे हैं? नहीं, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो देखते हैं कि ये सब चमार बैठे एक तरफ से। क्यों? अरे जिनको चमड़े का ज्ञान होता है उनको चमार कहते हैं, मूछी कहते हैं। हमारे इस चमड़े को देख करके इनको हंसी आई या इनको विचार करते हैं ये सुंदर है कि कैसा है। हमारी आत्मा को नहीं देखा, हमारे अंदर में रहने वाले जो परमात्मा है उनको नहीं देखा, कितने श्याम सुंदर है वो, हमारे इस शरीर को देखा मैला कुचैला फटा हुआ। इसलिए सब चमड़े का कारोबार करने वाले, क्रूब लेदर का विचार करने वाले सब एक तरफ से मूछी बैठे हैं। सब लोग गंभीर हो गए। महाराज जनक उठे, अपने सिंहासन से उठकर उनके चरणों में गिर गए और उनको अपने गोदी में लेकर के अपने सिंहासन पर बैठा। यह है ब्रह्मज्ञान, आत्मदर्शन। अभी आत्मदर्शन का प्रारंभ ही रूप है, पहला ऊपर वाला नहीं, यह तो अभी प्रारंभिक श्रेणी ब्रह्मज्ञान का बतला रहा। ब्रह्मज्ञान की अंतिम श्रेणी कृष्ण प्रेम है, जो जीवों में किसी न किसी रूप में पड़ा है, यह प्रेम ही सनातन है, ज्ञान नहीं। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। जब मोहिनी रूप का रूप देखा जगत के लोगों ने, यहां तक कि भस्मासुर तो मोहित हो गया, देवता असुर गंधर्व सभी लोग मोहित हो गए। इसलिए सनातन धर्म क्या है? प्रेम। किंतु प्रेम कैसा? जीवों का जो पहले बतलाया, जो सनातन जीव हैं, उनका सनातन पर ब्रह्म जो कृष्ण है, उनके अंदर प्रति जो प्रेम है, यही प्रेम सनातन धर्म है और दूसरा कोई नहीं। जो नहीं जानते इसको विचार नहीं कर पाते, वो समझते हैं कि देवताओं की पूजा भी सनातन धर्म है, गणेश की पूजा भी सनातन धर्म है, भूत पिशाचों की पूजा भी सनातन धर्म है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से यह कहा। क्या कहा? जो देवताओं की उपासना करते हैं देवलोक में जाकर के फिर इस जगत में चले आते हैं स्वर्ग में। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम खीने पुण्य मर्तलोकम विषम एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा। देवताओं की उपासना करने वाले जन्म मरण से अतीत होकर के भगवान की प्रेममयी स्थिति को पा करके नित्य काल के लिए वैकुंठ या लोग वृंदावन में नहीं जा सकते। कौन जाएगा? जो भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, राम की आराधना करेंगे, भगवान की आराधना, अवतारों की करें, उसमें कृष्ण की और कैसी उपासना। आराध्यो भगवान ब्रजे शतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजु बधु बरगेन जा कल्पिता श्रीमद भागवत प्रमाणयमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो नः परः। कितनी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये सनातन जो पर ब्रह्म है उसी का नाम श्री कृष्ण ब्रजेन्द्र नंदन है। ये भी समझ रखो देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हैं वे पूर्ण ब्रह्म हैं, परंपरात्मा पूर्णतम ब्रह्म नहीं है, कृष्ण ही ब्रजेन्द्र नंदन गोपियों के आराध्य जो हैं, गोपियां प्रेम से जिनको बांध लेती हैं, राधा जी के अंचल में जो बंध जाते हैं छुड़ा नहीं पाते उस अंचल को, गोपियों के प्राण जीवन बल्लभ है, यही परस्पर प्रपन्न है। उनके साथ में चार प्रकार के संबंध होते हैं, वो संबंध क्या है? एक तो हनुमान की भांति उनको अपना प्रभु समझे, अपने को दास समझे। सनातन धर्म का ये कड़ियां है, फूल है, ये सब जो जगत के जो धर्म है ये नहीं, वो सनातन धर्म का मूल माला है। उस माला में ये सब फूल हैं, कौन कौन? पांच प्रकार के फूल हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। सनक सनंदन सनातन इत्यादि का जो ऋषि थे उनका कृष्ण के साथ में कोई संबंध पक्का नहीं था, वो उनको ब्रह्म के रूप में जानते हैं, एक संबंध नहीं था। हनुमान का उनके प्रति राम और हनुमान का संबंध, ये दास्य प्रेम उससे श्रेष्ठ है, राम के अतिरिक्त और कहीं नहीं जो सब राम का से। इनसे भी बढ़कर के कौन है? पांडव लोग हैं, वो कृष्ण की आराधना करते हैं। ये हनुमान जी राम के साथ में खेल नहीं सकते, उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते, उनको प्यार नहीं कर सकते, हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे उनके सामने ऐश्वर्य और विभूति के साथ में, कभी उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते हैं। किंतु ब्रज के लड़के सब क्या करेंगे? उनके साथ में गैया चराते हुए बंसी बजाते हुए कृष्ण को पछाड़ देंगे, कृष्ण पराजित होकर के हंसेंगे, अपना जूठा कृष्ण को खिलाएंगे, उनका जूठा खाएंगे, उनके कंधे पर चढ़ सकते हैं और उनको आलिंगन में पांच में बांध सकते हैं। कृष्ण उनके प्रेम के लिए ललकते हैं। हनुमान जी वहां नहीं जा सकते डर के मारे, उससे भी बढ़कर के यशोदा मैया का प्यार है, वात्सल्य भाव। इसमें क्या होता है? ये उनको कृष्ण को अंगुली देखा करके डराती हैं, धमकाती हैं। तुमने मक्खन चुराया? नहीं मैया, मैंने कब मक्खन चुराया? मैया मैं नहीं मक्खन खायो, मैंने तो मक्खन खाया नहीं। वो कौन? परब्रह्म उत्तर दे रहा है, नहीं मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। अरे भोर भयो सो गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, परब्रह्म झूठ बोल रहा किनसे? अपनी मैया से। मैया मैंने माखन खायो, जब शाम भोर भई तो तुमने हमको मधुबन में गैया चराने के लिए भेजा और शाम तक गैया चराता रहा, शाम को जब आया तो उस समय में शाम हो गई थी रात, मैंने मक्खन कब चुराया? मैया करे तूने ही मक्खन चुरायो, तुम झूठ बोल रहा। ओहो मैया मैं तेरा तू मेरी जाया नहीं, मैं तुमने हमको पेट से पैदा नहीं किया, मैं किसी दूसरे का लड़का हूं, इसलिए तुम मुझको इल्जाम लगा रहे। इतना सुनते ही यशोदा जी के आंखों में आंसू भरे। अब मैं कहीं जा रहा हूं दूसरी जगह जहां मेरी मैया होगी। यशोदा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, बस उनको गोदी में लगा ले लिया। नहीं बेटा तुमने मक्खन नहीं खाया। कृष्ण क्या कहते हैं? मैया मैंने ही मक्खन खायो, मैंने ही मक्खन खाया। और जो सर नहीं नहीं तुमने नहीं खाया, तुम हमारा ही पेट का जन्मा हुआ, तुम हमारा बालक। और कभी कभी यही यशोदा मैया हाथों में डंडे लेकर कहती हैं, तुझे गोदी नहीं लूंगी, तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी, और उसको रस्सी में बांध करके ओखल में बांध देती है। इसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। ये कृष्ण परब्रह्म हो करके, भगवान की परम सीमा हो करके, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, समस्त प्रकार के एपुलेंस में होते हुए भी नारायण से लाखों गुणों श्रेष्ठ, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, ईश्वर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहानादिरादि गोविंद सर्व कारण, सब कारणों के कारण होते हुए भी आज मैया के प्रेम से और उनके डर से कांप रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे, मैया मुझे मत मार, बार बार उनके पीछे चले जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गंगा जमुना बह रही है, काले कज्जल और उनके नेत्रों के जल मिलकर के जमुना और गंगा बह रही, और डर के मारे शपक रहे हैं, कभी इधर छिपते हैं कभी उधर, मैया मुझे मत मार। किसको? परब्रह्म को। ये वात्सल्य रस है, ये संबंध है, ये प्रेम जीव का और उनसे, और इसे भी बढ़कर मैया को भी छोड़कर गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं, और क्या करते हैं, यतकिं करीश बहुश खलुकाग्वानी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले यस्याकदा रश्मिधे विश्वानुजाया ततकेलि कुंज भवनांगन मार्जनीश्य। कुंजों में उनकी सखियां राधा जी की सहेलियां कृष्ण को कुंज में नहीं जाने देती, और कहती हैं कि काले को यहां पर आने की जरूरत नहीं, तो कुंज से बाहर। सीता जी को तो उन्होंने एकमात्र उनको त्याग कर दिया सबके लिए, राधा जी को त्याग करने की शक्ति नहीं है, कहीं ये तुम्हारी विवाहिता पत्नी हूं मैं, तेरी खाती पीती हूं कुछ, राधा जी उत्तर और गोपियां उत्तर दे देंगी। प्रेम में लेना देना नहीं होता, सर्वस्व देना होता है। गोपी ने अपना सर्वस्व जो कुछ था उनको समर्पण कर दिया है, और कृष्ण ने अपना सब कुछ इन गोपियों को दे रखा है। इसको मधुर रस कहते हैं। जीवों का संबंध इन पांचों में से कोई एक है, इसका नाम सनातन धर्म है। इसको समझिए, संक्षेप में मैंने बतलाया, इसका नाम सनातन धर्म है। इसकी ये पांच, इसमें फूल लगे हुए हैं, ये सनातन धर्म है, इसको समझना चाहिए। और इस चीज को थोड़ा सा सरल करके आपके सामने बतलाऊंगा, कल फिर शायद मुझे यहां आना पड़ेगा, उसमें मैं कृष्ण का लीला चरित्र मधुर उनकी जो बातें हैं मैं बतलाऊंगा, यह संबंध सनातन धर्म के संबंध, गोपियों के साथ में कृष्ण का कैसा मधुर संबंध है, इसको बतलाऊं। एक राजा थे, उनका नाम चित्रकेतु महाराज था। भागवत का प्रसंग बतला रहा हूं। मैंने पहले कहा है कि वेदों का सार संकलन, वेद समस्त उपनिषद रामायण महाभारत पुराण सबका सार श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पहले व्यास जी सब शास्त्रों का निर्माण कर चुके थे, किंतु उनको मन में शांति नहीं थी। शांति कब हुई? जब कृष्ण का लीला चरित्र लिखा श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भू भाव। अरे भावुक और रसिक भक्त लोग, जिसका पान करते हुए थकते नहीं, जो कि निगम कल्पतरु, कल्पतरु कहते हैं जो इच्छा करे वही दे देगा, वेद है ऐसा, उसका ये प्रपक्कल रसमय फल है। ये कौन? श्रीमद् भागवत। उसमें गुठली नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं जो इसको फेंक दे, रस ही रस वो है, गुरु परंपरा की धारा से इस जगत में आया है, और सुखदेव गोस्वामी ने उसमें से रस आने के लिए छेद कर रखा है। सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से इसका कहा है, ये वेदों का परपक्क फल है। इसलिए इस में से एक पहला उपाख्यान इस प्रेम को समझने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए मैं बतला रहा हूं। महाराज चित्रकेतु थे बड़े विद्वान, अगाध वेद उपनिषद शास्त्र सबका इनमें ज्ञान, 60-70 हजार वर्ष की आयु हो गई थी, अभी बूढ़े नहीं नौजवान थे, उन्होंने एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी करते हुए हजारों रानियों से शादी की, किंतु किसी को भी एक पुत्र नहीं हुआ। मेरी भाषा समझ में आप लोगों को आ रही है? आप लोगों को ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, या प्रवचन के बाद में भी आपको समय मिलेगा, उसमें पूछ लेंगे। तो चित्रकेतु महाराज ने के हजारों रानियां थी किंतु बेटा एक से भी नहीं हुआ, बड़े दुखी थे। समस्त विश्व के भारत के ही नहीं, सारे विश्व के राजा थे, धन दौलत अगाध थी, सेनाएं थी, सबका वेतन ठीक से चलता था, स्त्रियां एक एक से सुंदरी थी, सभी लोग प्रजाएं सभी संतुष्ट थे। राजा संतुष्ट नहीं थे क्योंकि एक लड़का है। सोचते थे हमारे बाद में राज्य का अधिकारी कौन होगा, जब मैं मर जाऊंगा तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, जिसको बेटा नहीं होता वो बड़ा दुर्भागा जिस जगत जीवन में। इसलिए सब कुछ होते हुए हमको पुत्र नहीं है, इसलिए बड़े दुखी थे। एक समय अंगिरा महाराज बड़े ऋषि थे, बड़े शक्तिशाली, वो उनके राज्य में पहुंचे। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत करके पूजा की, उनके चरण पखारे, अपने घर में छिड़का और उनको खिलाया पिलाया जैसा कि फल मूल जैसा खाते हों, और इसके बाद में उनके चरणों में बैठ गए। अंगिरा ऋषि ने कहा, जैसे तुम्हारी स्त्रियां कुशल से हैं, तुम्हारा राज्य ठीक है, धन की कमी तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं सब प्रकार से ठीक हूं, किंतु प्रभो मैं बड़ा दुखी, इसलिए कि हमें कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे ललाट में कोई पुत्र लिखा ही नहीं, पुत्र नहीं होगा। महाराज आप तो बड़े शक्तिशाली हैं, आप इच्छा मात्र से वर दे सकते हैं, पुत्र हमको जरूर होना चाहिए, उसके बिना मैं सुखी नहीं होऊंगा। उन्होंने कि भगवान का भजन कर, तब तू सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, जी महाराज भगवान का भजन हम कर लेंगे, अभी हमको एक पुत्र दे दीजिए, किसी तरह से नहीं माने। अच्छा तो ठीक है, तू नहीं मानता तो तुमको पुत्र होगा, किंतु हर्ष और सुख, सुख दो, दुख और सुख देने वाला होगा पुत्र। महाराज ठीक है, जैसा भी हो, दुख और सुख देने वाला तो सब संसार में रहता ही है, हमको ऐसा ही पुत्र हो। तो जी ठीक है, तुमको होगा किंतु हर्ष और दुख होगा, ठीक है कोई परवाह नहीं, पुत्र हो। ये कहकर के ऋषि चले गए, और ठीक 9 महीने के बाद में उनका एक चांद सा मुखड़ा, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत एक लड़का पैदा हुआ। राजा बड़े प्रसन्न हुए, राज्य में बधाइयां बजने लग गई, सारी प्रजाएं बड़ी खुशी हो गई, और लड़का चांद की तरफ में जैसे एकम के बाद में द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी का चांद बढ़ता है, ऐसा लड़का भी बहुत सुंदर सुकांत और सब गुणों से भर, मानो हंसता तो फूल गिरने लगते, इतना सुंदर, जैसा सुंदर लड़का उन लोगों ने देखा। धीरे 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 वो 5 वर्ष का हुआ, राजा राज्य छोड़कर के उसी रानी के पास में बैठा रहता और बच्चे को गोदी में लेता, खिलाता, दुलार करता, प्यार करता। उसकी और जो रानियां थी ईर्ष्या से भर गई, ये राजा हमें एक दासी की भांति भी नहीं पूछता है, सब समय राजा उसी रानी के पास में रहता है और उसी के लड़के से रमा रहता है, हम दासियां हैं, एक साबुन और तेल भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये कुछ नहीं पूछता है, तुम अच्छी है बुरी है एक बार हमारे तरफ में नजर भी नहीं करता है। बड़ी दुखी, ये सब दुखों का कारण वही बालक है। ऐसा सोच करके सबने मिल करके षड्यंत्र करके दूध में कालकूट विष मिलाया, और सीप में, समुद्र के किनारे जो सीपें होती हैं, सितुहा जिसको कहते हैं, चम्मच के बदले में उसमें हम लोग पहले व्यवहार करते, बच्चों को उसी से दूध पिलाते, बस उसी में रख करके उसको पिला दिया जब ये कहीं काम में थी, और बच्चा को ये कालकूट विष मिलते ही बस लड़का काला हो गया और एकदम मर गया। प्राण निकल गए। वो पलने में झुलाई हुई थी। रानी ने कहा जी बहुत देर हो गई, बच्चा रो नहीं रहा, जल्दी से उसको ले आओ, उसे दूध पिलाऊंगी। जब दाई गई देखा, अरे दैया रे मैं तो मारी गई, छाती पीट पीट करके वही बेहोश हो गई। रानी दौड़ी देखा जी हमारा बेटा तो मर गया। कैसे मर गया? और वो भी बेटे के लाश के ऊपर में गिर पड़ी मूर्छित होकर। राजा को पता लगा, राजा भी दौड़ा हुआ आया। एक तरफ रानी गिरी, एक दूसरी तरफ में राजा। सारी प्रजाएं रोने लगी, कोई भी सांत्वना देने लायक नहीं रहा। और उस समय में फिर वही अंगिरा ऋषि नारद के साथ में वहीं पर वेश बदल करके आए। इनको लोगों ने पहचाना नहीं। इन लोगों ने पूछा जी भाई क्यों रो रहे हो इतने आदमी, बात क्या है? तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। अरे बतलाओ तो सही, भले मानुष किस लिए रो रहे? अरे बेटा इनका मर गया, देखता नहीं है? अरे मर गया, गया कहाँ? गया काशी, गया बनारस, गया फिजी, गया कहाँ गया? कब आएगा? जो गया सो तो आएगा। अरे मूर्ख लड़के, वो वहां गया जहां से लौट करके कोई नहीं आता। झूठ बोल रहे हो, कहां गया? यही तो सो रहा है, यही तो बच्चा तुम्हारा सो रहा है। कहीं ये बोलता नहीं है? तो बोलता कहीं नहीं है, पड़ा तो है यही। इसी को अपना बेटा माना, इसी को तुमने अपना नाती माना, इसी को तुमने प्यार किया, खिलाया, लाल पांव किया, तेल अपटन लगाए, तो फिर ये तो सामने बैठा था नहीं, इसकी आत्मा निकल करके गई। ओह हम आत्मा के लिए रो। अच्छा ये तो बतलाओ जिस आत्मा के लिए रो रहे हो वो कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, काला था या गोरा था, कैसा था? तो हमने तो देखा नहीं। अब तो देखा नहीं, जो देख रहा है उसे तो बात नहीं करता है, उसको उठाता नहीं, बोलता नहीं, और जो चला गया उसको देखा नहीं, उसके लिए रो रहा है। इसके लिए रोने की क्या जरूरत? लाखों लोग तो मरते हैं, उसके लिए कोई नहीं रोता, अपने लिए रोता है, जैसे ये मेरा है, यही संसार है। वो आत्मा जो चली गई वही परमात्मा का अंश है, वो नित्य है, फिर वो दूसरे शरीर में जाएगी, उसका धर्म विकृत नहीं होगा, वो सब समय एक रस रहेगा। शरीर का धर्म बदल जाएगा, इसके माता पिता बदल जाएंगे, इसकी आसक्ति की वस्तुएं, कल सुअर के यहां पैदा हुआ तक है यह सुअर मेरी मैया है और सुकर हमारा पिता है। बंदर का बच्चा पैदा होगा तो उसका बदल जाएगा, किंतु आत्मा का नहीं बदलेगा। नारद ऋषि के उपदेश को सुनकर के कहा ये तो नारद ऋषि हैं। नारद ऋषि ने कहा उस बच्चे के पीठ पर, यहां पर छाती पर हाथ रख दिया, बेटा जल्दी से उठो, तो तू कहां गया है? तुम्हारे माता पिता और सब लोग रो रहे हैं। उनके छाती पर हाथ रखते वो बैठ गया है, किसने मुझे बुलाया? मैं बड़ा सुख से था, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी मैया है? मैं इनका 50 बार पिता हुआ और इस बार इस जन्म में मैं इनका पुत्र हुआ, तो हमको पुत्र कहते हैं, हमने तो इनको कभी पुत्र नहीं माना। अभी मैं जहां गया अब दूसरे कहते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं। अरे मैं तब पुत्र हूं केवल प्रभु का, कृष्ण का, वही हमारे प्रियतम पिता है, वही हमारे संबंधी हैं, सगे हैं, सब कुछ है, जगत का नाता 2 दिन का। इसलिए आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है, कपड़े की भांति शरीर को धारण करती है। वंशात जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश। आप लोग समझेंगे, आप लोगों का ये मौरुषी पट्टा ये फिजी नहीं है, अभी कुछ दिनों के बाद में है तो 100 वर्ष 200 वर्ष बाद में, या कभी कल परसों तरसों जाना पड़ेगा इस सब को छोड़ करके। ये हमारा घर नित्य घर तो बोलो बैकुंठ है, बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, दिस इज दिस पॉलिसी, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसलिए चित्रकेत महाराज जी इनके उपदेशों को सुन करके उनको ज्ञान हुआ, उनके चरणों में गिर गए, प्रभु आप मुझे रक्षा की। उनको उन्होंने उनको मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और रानियां जिन्होंने बीज दिया था वो उनके सामने नारद जी के पास में आई और उन्होंने कबूल किया जी हमने बीज दी थी, आप हमारे लिए अब क्या होगा, हम तो जन्म जन्मांतर
हम तो नरक में जाएंगे, हमारे उद्धार का उपाय बन रहे। उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, उनको भी दिया बस इस नाम को जपो। बतलाया क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति, और कोई कलयुग की गति नहीं है। इस नाम के द्वारा ब्रह्म कौन है कृष्ण, इसकी अनुभूति होगी, उनका जो प्रेम है हमारे हृदय में आएगा और उसी के द्वारा हम सहज सहज रूप में उस कृष्ण को पा जाएंगे गोलोक वृंदावन में, जहां से फिर लौटना नहीं होता। जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, इस जगत में रहते हुए हमारे अंदर में ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा जो कृष्ण नाम लेते चित्त द्रवित हो जाएगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी। नयनं गलदाश्रुधारया बदनं गदगदरुद्धया गिरा कुलकरनिचितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यदि नाम करते हुए कृष्ण का नाम चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते, तो क्या समझो हमारे ये दोष, हमने कुछ अपराध किए हैं, वैष्णव के चरण में कुछ उनकी निंदा की होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो कृष्ण का नाम इतना मधुर इतना शक्तिशाली, जो अजामिल एक बार अपने बेटे के लिए नारायण नाम उच्चारण किया और बैकुंठ में चला गया। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान बन गए वाल्मीकि, मरा 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 जपते हुए और राम नाम हुआ और बैकुंठ को चले गए। तो कोई जानबूझ करके बड़े प्रेम के साथ में हरे कृष्ण करेगा और उसको कृष्ण प्रेम नहीं होगा, आंखें नहीं द्रवित हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण से बढ़कर के मधुर कोई नहीं, इसलिए परम तत्व सनातन धर्म के मूल पुरुष कृष्ण है और हम उनके अंश हैं। जीव का परमात्मा का परस्पर जो संबंध प्रेम है, प्रेम से ही जुड़ते हैं। प्रेम के बिना वो लाख आप कुछ कीजिए, नाम भी यदि प्रेम के साथ में नहीं होगा नहीं मिलेगा। एक शर्त यही है कि जिस व्यक्ति में प्रेम होगा, अरे विद्रानी को देखो, उनको भिलनी को देखो, शबरी भिलनी को फूलों से उनके लिए मार्ग की रचना करती है, हमारे राम कब आएंगे, और जूठी बेर उनको खिलाती हैं खाते हैं। ऋषियों ब्रह्मर्षियों के और मायावादी उस समय जो ऋषि थे उनके यहां नहीं गए, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रेम ही सनातन धर्म है। अभी प्रेम हमारा विकृत है, जिस समय सब जगहों से प्रेम निकल करके राधा कृष्ण के चरणों में जब आएगा तो वो सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च भाव है। अब कल हम इसके संबंध में करेंगे, आज थोड़ा सा कीर्तन करके इसके बाद शायद आरती होने वाली होगी, इसके बाद कल अधिक से अधिक लोग आएंगे, कल हम इसके संबंध में कुछ और कुछ आगे की कड़ी बतलाएंगे।
माला माल हुए प्रभु को अपनाया है कैसे कैसे ईश्वर भी कैसे कैसे उन्हें भगतों के मन भाया है ईश्वर भी
राधा रमन हरि बोल।
जय जय राधा रमन हरि बोल,
राधा रमन हरि बोल,
राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
राधा रमन हरि बोल,
हरि बोल। नव नागर नवल छल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, नव नागर नवल छल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, करि कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमन हरि बोल, करि कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमन।
वन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।